दूसरा योग काल लिखा मन वचन काय की सक्रियता, और तीसरा योग काल हुआ बाहर भटकते मन को भीतर ले जाने की क्रिया। बाहर भटकते मन को भीतर ले जाने की क्रिया ये योग कहलाता। तीसरी हो गई ये परिभाषा। चौथी परिभाषा योग की थी चित्त वृत्ति का निरोध करना। तीसरी परिभाषा देखो कि चित्त वृत्ति का निरोध करना, और चार हो गई। पांचवी परिभाषा बनाई थी योग मतलब समाधि या कि ध्यान अवस्था, इसे भी योग कहते हैं। इस तरह ये पूरे योग के बारे में ये बोलता है। वो योग अलग चीज है, जो अपन योग कहते हैं ना, योग आसन वगैरह, उसमें पर्टिकुलर आसन पर ही ध्यान होता है इन लोगों का आज के समय में। पर एक्चुअली योग में सब चीजें शामिल है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ अंग होते हैं योग के। देखना अच्छा यम, हाँ ये पाठ यम योग के आठ अंग यम। जीवन परंत के लिए पाप का त्याग कर देना नियम के है, जो नियम जीवन भर के लिए जाए वो यम, पर जो थोड़े समय के लिए जाए वो नियम यम नियम। तीसरा आसन यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम मतलब सांसों को साधना, सांसों को साधना प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम आसन। आसन में मतलब दो ही आसन है ध्यान के, पद्मासन और खड्गासन या सुखासन, उसको बताओ सुखासन जिसमें सुख से बैठ सके तो सुखासन। फिर उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार पा में रा प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या होता, पांचों इंद्रिय के विषयों को छोड़ देना, विषय सामग्री से दूर हट जाना, प्रत्याहार कर दिया, या कि मन में आते हुए बुरा बुरे विचार को हटा देना, प्रत्याहार। प्राणायाम सीखा फिर प्रत्याहार किया, फिर उसके बाद होता है धारणा। कहते ना किसी के बारे में ये धारणा बनानी, तो वैसे ही जो है हमें भी धारणा बनानी पड़ेगी, भगवान ऐसे हैं हमें उनके स्वरूप को ऐसे विचार करना है, ये एक तरह से धारणा। फिर ध्यान, अब जिस चीज की धारणा बनाई उसी पे टिक जाना, ये हो गया ध्यान, और फिर उसके द्वारा जो आनंद प्राप्त हुआ वो कहलाएगा समाधि। ऐसे है पूरी आठ चीजें समाधि, जहाँ पर आदि व्याधि और उपाधि सब शांत हो जाती हैं उसे कहते समाधि। आदि व्याधि उपाधि, आदि मतलब मन का रोग, व्याधि मतलब शरीर का रोग, और उपाधि मतलब संसार के रोग कि जो पद मिल जाते हो जो पद मिल जाए ये उपाधि है। आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि, ऐसे करके ये योग के लिए ये योग दो प्रकार का होता है। लिखा था अपन ने पिछले दिनों पढ़ा था राजयोग और हठ योग। राजयोग से आध्यात्मिक उन्नति होती है और हठ योग से दैहिक शक्तियां जागृत होती है। राजयोग से आत्मिक शक्ति जागृत होती है और हठ योग से दैहिक शक्ति, देह की शक्ति जागृत होती है। विभिन्न प्रकार के देह में चमत्कार कर रहे हैं, कोई हट करके बैठ गया। हाँ, वही तो पंचांग अग्नि तपरे में श्वास का अवरोध कर लिया तो घंटों बैठी हुए श्वास ही नहीं चल रहा, थोड़ा चमत्कार लगता है। वो कुंडली जागृत होती है, वो अध्यात्म योग है, हट योग में नहीं। हट योग में शरीर की विशेष शक्ति का, अध्यात्मिक जागृति या कि आधुनिक जागृति, इसमें आत्मा धीरे धीरे उधर बढ़ता है और उसमें देह की विशेषता। जैन योग कायोत्सव या भेद विज्ञान पर टिका है। कोई पूछेगा कि आप कहें जैन धर्म में भी योग है, तो है, लेकिन वो काय पर टिका है, भेद विज्ञान या कायोत्सव, शरीर से ममत्व हटाना, इसका नाम कायोत्सव है। और भेद विज्ञान का अर्थ भी यही है, शरीर और आत्मा को पृथक पृथक देखना। तो जैन योग भेद विज्ञान या कायोत्सव पर आधारित है, टिका है इसके आधार। जैन योग आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया का नाम है। जुड़ने का अर्थ है योग, आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया का। प्रेक्षा ध्यान ये बनने टर्म्स यूज किए थे इसी के बारे में। ये पूछ सकता है कि जैन ध्यान में प्रेक्षा ध्यान का क्या मतलब? तो प्रेक्षा ध्यान जो है प्राधन ईक्षा, प्राधन ईक्षा बराबर प्रेक्षा बनी है। इसका अर्थ क्या होता है? चित्त में गहरे बैठकर आत्मा का दर्शन करना, मन की गहराइयों में उतर करके आत्मा का दर्शन करना, ऐसा ले लीजिएगा। ये चित्त की गहरे में उतर कर आत्म दर्शन करना, ये प्रेक्षा ध्यान। इसके प्रवर्तक तुलसी है, आचार्य तुलसी। ये बहुत लेटेस्ट है, होता पुराना नहीं, श्वेतांबरों में आचार्य तुलसी इसके द्वारा। विपश्यना अर्थात गहरे में स्वयं को खोजना, विपश्यना गहरे में स्वयं को खोजना, ये बौद्ध पद्धति है। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ये बौद्ध पद्धति, बौद्ध धर्म है। और समीक्षण, समीक्षण सा वो वाला लिखना सड़क, समीक्षण, समीक्षण मन को सम, मन को सम करना या कि समत्व धारण करना, समत्व समता धारण करना, वही समीक्षण कहना है। ये इस तरह से तीन टर्म्स आती हैं उसमें। और अपने यहाँ पर जैन ध्यान को ही जैन योग कहते हैं, तो अपने यहाँ ध्यान के चार भेद करें, आध्यान, गौड़ ध्यान, धर्म ध्यान, शुद्ध ध्यान। जब अपन धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे तो अपन हमेशा कहेंगे कि हमारे यहाँ चार ध्यान माने दो संसार को बढ़ाने वाले हैं आर्तोद ध्यान, और दो मोक्ष को बढ़ाने देने वाले हैं धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान। आर्त ध्यान में स्वयं को पीड़ा देना, रोध ध्यान में दूसरे को पीड़ा देना। हार ध्यान ब्रैकेट में लिखो, दूसरे स्वयं को पीड़ा देना। रौद्र ध्यान ब्रैकेट में लिखो, दूसरे को पीड़ा देना। लिख लो तो हाथ बोला करे क्या हो पहले कहानी सुनाते थे माँ लोग, तो वो कहती कि तुम हाँ धोते जाना ध्यान। फिर देखिएगा धर्म ध्यान, धर्म ध्यान में स्वाका कल्याण, और शुक्ल ध्यान करता है तो स्व के साथ पर का कल्याण, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता तो अपना तो हो ही जाता, दूसरे का भी कल्याण, तो इसलिए ऐसी परिवर्तन किसमें श्रुद्ध नहीं भैया शुक्ल चार महीना है पढ़ो है चार ध्यान शुक्ल ध्यान पर का कल्याण, ध्यान में स्व का कल्याण और शुक्ल ध्यान में मुक्तता है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि स्व का ही होता है, नहीं, स्वयं के कल्याण के साथ पर का कल्याण भी होता है धर्म ध्यान में, लेकिन शुक्ल ध्यान में पर के कल्याण के साथ स्व का कल्याण, एक में मुख्यतः स्व कल्याण की है, दूसरे में पर कल्याण की। जैसे आठ ध्यान में स्व की स्व को पीड़ा दे रहे हैं, रोध ध्यान में दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब दूसरे को दे रहे हैं तो अपने को ना हो, पर मुख्यतः दूसरे को पीड़ा देने की है रोध, ऐसा बस के ताल्लुक में नहीं तो फिर रियाज कर ही जाएंगे।
संपूर्ण जैन समाज सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त है, ये पन्ने देखा था शायद पिछले दिगंबर। सो ये कब हुआ? तो भगवान महावीर के मुक्त होने के 609 वर्ष बाद, विक्रम संवत 139। भगवान महावीर के मुक्त होने के 609 वर्ष बाद, यानी विक्रम संवत 139। ये दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर से दिगंबर का डिवाइडेशन का काल है। दिगंबर में उप संप्रदाय तीन थी, दिगंबर उप संप्रदाय ऐसा लिख लें शार्ट में, 20 पंथ, 13 पंथ, 52 पंथ, ऐसे तीन है। तो श्वेतांबर में भी उप संप्रदाय है जिसमें मूर्ति पूजक पहला, ये थोड़ा कठिन, मूर्ति पूजक दिगंबर में नहीं लिखा, दिगंबर में 20 पंथ। आज क्या बात है, आज क्या बात है, चित्र से नहीं लिख रहे, चित्र से नहीं लिख रहे, देखो जल्दी 20 पंथ, 13 पंथ, 18 पंथ, श्वेतांबर में लिखो उप संप्रदाय। मूर्ति पूजक अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं, मूर्ति पूजक डेरावासी, डेरावासी को ब्रैकेट में लिखना मंदिर मार्गी, ये लोग मंदिर मार्गी कहलाते हैं, आपके कौन होते हैं क्या पता, डेरावासी मंदिर मार्गी तीसरा है ना, तीसरा स्थानक वासी तीसरा, उन्हीं को ब्रैकेट में साधु मार्गी बोलते हैं। पहले लिखो मूर्ति पूजक नंबर वन, नंबर टू डेरावासी, डेरावासी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मंदिर मार्गी, नंबर तीन स्थानक वासी, स्थानक वासी ब्रैकेट में लिखेंगे साधु मार्गी, इसकी उत्पत्ति भी लिख लेना साधु मार्गी, साधु मार्गी 1653 ईस्वी में, ज्यादा पुराना ही है डिवाइडेशन 1600। 13 पंथी इन लोगों के यहाँ पर है, 13 पंथी चौथा है, वो 1817 में बना, चौथे नंबर का उप संप्रदाय 13 पंथी 1817 ईस्वी में बना, 17 में। इनके यहाँ पर 937 ईस्वी में 113 गच्छ हो गए थे, गच्छ इनके यहाँ चलते हैं विभिन्न प्रकार के गच्छ, छोटे छोटे ग्रुप, तो 937 हो गए थे, 937 ईस्वी में 113 गच्छ थे। इतना श्वेतांबरों के बारे में ज़्यादा डिटेल, 20 पंथ 13 पंथ कब हुआ इसके ब्रैकेट में लिख लें, 20 पंथ 13 पंथ में 12वीं शताब्दी लगभग, 12वीं शताब्दी में हुआ ये डिवाइडेड, और चारण पंथ बना 15वीं शताब्दी, चारण पंथ के ब्रैकेट में लिख लें 15वीं शताब्दी ईशा के पंथ, इतना ही जानने योग है और बाकी तो
15वीं शताब्दी,
20 और 13 दोनों डिवाइडेशन हुआ है 12वीं शताब्दी, बस आज अपने को पढ़ना है वो स्थान 15 मिनट में 14 मिनट, और फिर लिख लेंगे बाद में, लिखवा तो देंगे सबकी परिभाषा, लेकिन पहले समझ लें कि गुण स्थान कैसी होती है, अपने आप से शब्द क्या कह रहा है, गुणों का स्थान चार, जैसे जैसे हमारे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, इस तरह से गुणों की बढ़ती हुई कक्षाओं को ही गुणस्थान कहते हैं, या कि निरंतर पवित्र भाव दशा का नाम, बढ़ती हुई भाव दशा का नाम गुणस्थान। शास्त्रीय परिभाषा क्या है, तो कहते हैं मोह और योग के माध्यम से होने वाले आत्मा के भावों की तरतमता का नाम गुणस्थान, तरतमता मतलब जो क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी या कि अप डाउन, उतार चढ़ाव, इसको अपनी भाषा उतार चढ़ाव, तो क्या हुआ योग और मोह या कि मोह और योग के माध्यम से होने वाली भाव दशा के उतार चढ़ाव को गुण स्थान कहते हैं। ये जो है वैसे तो विभिन्न प्रकार के जीव हैं तो विभिन्न प्रकार के परिणाम होंगे, अत्यंत मलिन भी होंगे और अत्यंत विशुद्ध भी होंगे, और उसके बीच में जितने जीव हों उतने प्रकार के परिणाम होंगे, लेकिन उन सबके लिए 14 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है, इसलिए गुण स्थान 14 होंगे। भाव दशाएं तो बहुत प्रकार की हैं, जितने जीव हैं उतनी भाव दशा रहेगी, लेकिन उन सबको जो है हमने एक निश्चित प्रकार की भाव दशा में बांध दिया है, बहुत सारे लोगों की उसको, तो हमने 14 श्रेणियाँ बनाई, तो यही 14 भावों की श्रेणियाँ गुण स्थान कहलाते, 14 गुण स्थान कहलाते। इसमें सामान्य रूप से परिभाषा बनाएं, जब ऐसा जीव जिसके अंदर अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है वो कहलाता मिथ्यात् गुण स्थान। जब जीव को सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो जाती है तब वो कहलाता उसका चौथा गुण स्थान। सीधा पहले से होता है, जैसे ही श्रद्धा होती है तो चौथा गुण स्थान कहलाता, वह कहते हैं चौथा गुण स्थान, तो पहले गुण स्थान से चौथे में जाता है सीधा कोई भी जीव, जैसे ही उसको सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा होती। तो अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा के साथ साथ वो थोड़े से व्रत ले लेता है तो सीधा पहले से पाँचवें में जाता है, पाँचवा गुण स्थान देश व्रत, चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि। पहला गुण स्थान था, पहले से श्रद्धा हुई तो व्रत नहीं लिए हैं, लेकिन श्रद्धा हो गई है तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान, व्रत ले लिए अगर थोड़े से व्रत ले लिए तो पांचवा गुण स्थान देश व्रत, और अगर वह महाव्रत ले लेता है तो सीधा पहले से जाकर के सातवां अप्रमत्त व्रत, ये कहलाता गुण स्थान। इस तरह से उसका उसकी भावदशा इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, सातवें गुण स्थान में पहुंच गई कि वो वहां पर अप्रमत्त है लेकिन विरक्त भी है, दोनों उसकी टर्म्स अपने आप बता रही है, अप्रमत्त है और विरक्त, सावधान है और पांच पापों से विरक्त, तो सातवां हो गया। इस तरह पहले गुण स्थान से आत्मा अगर श्रद्धा करे तो चौथे में पहुंचती है, व्रत सहज श्रद्धा करे तो पांचवें में पहुंचती, महाव्रत सहज श्रद्धा करे तो सातवें में पहुंचती है, ये एक जनरल सी चीज। अब अगर चौथे गुण स्थान में पहुंचा था और चौथे गुण स्थान में पहुंच करके फिर व्रत ले गए तो चौथे से पांचवें में जाएगा, फिर महाव्रत ले गए तो चौथे से सातवें में जाएगा, या कि चौथे से पांचवें में जावे फिर महाव्रत ले गए तो सातवें में चला जाए, मतलब पहले से चौथे में, पहले से पांचवें में, पहले से सातवें, इस तरह चढ़ना होगा, या कि पहले से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से सातवें में, ऐसा चढ़ना होगा, या कि पहले से चौथे में, चौथे से सातवें में सीधा जा सकते हैं, या कि चौथे से पांचवें में जा सकते हैं, इस तरह ये चलता है। अभी ठहरो, इतना समझ में पहले कि कोई श्रद्धा वाली बात तो समझ में, भाई जैसे हमें श्रद्धा होगी तो हमारा पहले से चौथे में पहुंच जाएंगे, लेकिन जब श्रद्धा गड़बड़ा जाती है, होने के बाद जब डगमगा जाती है तो थोड़ी श्रद्धा है थोड़ी अश्रद्धा है तो उतरो नीचे तीसरे गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात् मिली जुली श्रद्धा, अश्रद्धा भी और श्रद्धा भी दोनों के बीच की स्थिति है, तो तीसरा गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है, ये चढ़ने के गुण स्थान है, ये गिरने का, मैं इसलिए पहले चढ़ने चढ़ने वाले गुण स्थान बना। अब चौथे गुण स्थान से अगर ऊपर नहीं बढ़े तो नीचे आना पड़ेगा, तो गिर गए। अब चौथे गुण स्थान से तीसरे में गिर सकते, चौथे गुण स्थान से अगर श्रद्धा बिल्कुल ही टूट गई और थोड़ा सा समय रहा है तो उस समय में नीचे आएगा सीधे दूसरे में, सासाधन सम्यक दृष्टि नाम का गुण स्थान, जिसने आसाधना कर दी है अपने सम्यक दर्शन की, श्रद्धा को जिसने खंडित कर दिया है और अभी अश्रद्धा में नहीं आया है उसके बीच में कहाँ रुकेगा, तो कहते वो सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरा गुण स्थान, और दूसरे में गया है तो नियम से पहले में आएगा, दूसरे में बहुत थोड़े समय के लिए, जैसे ऊपर से गिरे तो नीचे जमीन में नहीं आए, बीच में अटके हुए हैं, वो दूसरा गुण स्थान है। पहले से कोई भी तीसरे में नहीं जाएगा, पहले से दूसरे में नहीं जाएगा, हमेशा पहले से चौथे में जाएगा, वहाँ से गिरेगा तो तीसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा, फिर पहले में, जो तीसरे में जाएगा उसको गुंजाइश है वो अपनी श्रद्धा को फिर मजबूत कर ले तो चौथे में जा सकता है, लेकिन जो पहले चौथे से दूसरे में आया है उसको कोई गुंजाइश नहीं, उसको पहले में जाना पड़ेगा, फिर प्रयास करके फिर श्रद्धा करेगा। तो चार गुण स्थान श्रद्धा के हैं, बाकी दो गुण स्थान आचरण के हैं, ये ध्यान रखें। पहले से चौथे चार गुण स्थान श्रद्धा के हैं, श्रद्धा में कमी जोड़ी, बाकी जो गुण स्थान हमारे आचरण में पवित्रता जैसे जैसे आती है तो गुण स्थान बढ़ता है, और इसमें जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती वैसे गुण स्थान बढ़ता है। पहले से चौथे गुण स्थान को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि ये दर्शन मोहिनी के गुण स्थान है और बाकी गुण स्थान चारित्र मोहिनी, ऐसा कर लीजिएगा कहीं सुनने में आएगा, उसी को अपन कह रहे हैं कि चार गुण स्थान श्रद्धा के हैं, बस इसे जो है हमारे आचरण की बात। इस तरह ये गुण स्थान, एक छठा गुण स्थान बीच में रहेगा, वो छठा गुण स्थान भी गिरने का है। कोई भी जीव चौथे से छठे में नहीं जाता, चौथे से पांचवें से छठे में नहीं जाता, चौथे पांचवें से सब जाएगा तो सातवें में, सातवां अवस्थान में अप्रमत्त होता है लेकिन थोड़ी देर रहता है और नियम से छठे में आता है, फिर सातवें में चढ़ जाता है, फिर छठे में आता है। ये जो है मुनि महाराज जी के लिए हमेशा सुनने में आता है कि छठा सातवां होता रहता, ये है कि विरक्त तो है लेकिन जब सावधान है तो उसको सातवां, जब थोड़े असावधान हुआ तो छठा, नीचे नहीं आया लेकिन वहीं पर झूलता रहता जैसे झूला है, थोड़ा ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, भोजन करने के लिए अंगुली आगे कर दी, प्रमाद आ गया कि भोजन ग्रहण करूँ, छठा अवस्थान हो गया, ऐसे ही लेना है, आगम में लिखा है शोध करके लो, सावधानी आ गई, सातवां हो गया, खाने की इच्छा हो गई, खा लूँ, छठा अवस्थान, स्वाद नहीं लेना है, सातवां अवस्थान, फिर भीतर ले गए फिर छठा अवस्थान, बिल्कुल छठा सातवां छठा सातवां हो गया, बस प्रमाद अप्रमाद, क्योंकि विरक्त तो है लेकिन अलर्ट नहीं, बोल रहे हैं प्रमाद लेकिन मुझे आगम सम्मत बोलना है, बोलते समय प्रमाद, कोई भी क्रिया करेंगे वो सब प्रमाद कहलाएगा लेकिन क्रिया में जो अलर्टनेस है वो उसको अप्रमाद मिलेगा। इस तरह छठा सातवा कषाय की तीव्रता में होता है छठा और कषाय की मंदता में होता सातवा, इसी को शास्त्रीय भाषा में ये कहते हैं। कषाय की तीव्रता मतलब ये कि ग्रहण का भाव आ गया तो तीव्र तो कहना है, छठे गुण स्थान में दूसरे को मारने करके भाव आ जाते हैं, इतना छठे गुण स्थान में, क्योंकि चारित्र वाला काम है, श्रद्धा है सब बातें हैं लेकिन दूसरे को मारने करके भाव आ जाएंगे, इतनी इतना प्रमाद हो गया, अगले क्षण अरे तो क्या करता हूँ, तो फिर फौरन जो है फिर अप्रमत्त हो जाएगा। इस तरह छठा सातवां चाहते ये सात गुण स्थान बड़े आसान है, इनको अपने दिमाग में एक फिगर बना लेना चाहिए, क्योंकि परिभाषा तो अपन लिखेंगे तो ये परिभाषाएं तो आपको भूल जाएंगे, एक दिमाग बना लिया कि अश्रद्धा वाला गुण स्थान पहला, श्रद्धा वाला गुण स्थान चौथा, श्रद्धा के साथ थोड़े से व्रत वाला गुण स्थान तो फौरन कह दो पांचवा, भाई देशव्रती है पांचवा, महाव्रती है सातवां होगा या छठा होगा, छठा सातवां होगा, और अगर उसने श्रद्धा को तोड़ दिया है डमांडोल हो गई भाई समय के साथ उसकी तीसरे गुण स्थान में आ गया होगा, अगर उसने श्रद्धा को पूरा तोड़ दिया है लेकिन अभी निध्यात्म नहीं आया है तो दूसरा गुण स्थान होगा, साधन समय दृष्टि आसाधना कर दी, पकड़ नहीं सकते, एक समय से लेकर के छह समय का होता है, एक समय कितना छोटा है, सेकंड का लाखवां हिस्सा, इतना छोटे से समय के लिए दूसरा गुण स्थान होता है, एक समय से लेकर छह आवली तक का बस इतना ही उसका काल है, इससे ज्यादा काल नहीं है, फिर अपन अब इसके डिटेल पढ़ेंगे जब कि फिर वापस फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अब इसके लिए तो बहुत सारा काल भी लग सकता है, इसमें तो लिखा है कि एक कोड़ा मैंने एक पूर्ण कोटि आयु तक जितनी आयु लेकर के आया उसकी आयु के आठ वर्ष में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अंतर्मुख चौथे गुण स्थान में रहा सम्यक दृष्टि, फिर नीचे गिरा पहले में आया, जीवन पर्यंत तक रहा उसी गुण स्थान में पहले गुण स्थान में, और जीवन के अंत में अंतर्मुख समय में सम्यक दर्शन के साथ साथ केवल ज्ञान करके मोक्ष चला, अब क्या करो परिणामों की बड़ी विचित्र का है ये, परिणामों का उतार चढ़ाव है, इसको कहते उतार चढ़ाव, हम नहीं कह सकते किसी जीव को कि ये ऐसा है ये पतित है, किस क्षण वो पतित है और अगले क्षण ही अंतर्मुहूर्त में और बढ़ जाएगा, ये जो ये चर्चा बहुत चलेगी कि द्रवलिंगी भावलिंगी, ये भी इसी के बीच समझ लें, मुनि महाराज जी द्रवलिंगी है कि भावलिंगी, द्रवलिंग मतलब मात्र बाहर से तो त्याग किया है अंतरंग से भी आसक्ति बनी है, इसको कहते द्रवलिंग, ऐसी परिभाषा है, लेकिन क्या परिभाषा बनाते हैं आज वर्तमान में, जो मिथ्या दृष्टि हैं और बाहर से वे धारण करे हैं वे द्रवलिंगी हैं वे पूज्य नहीं हैं, ऐसी परिभाषा बनाते हैं, तो इसके बारे में जरा सा विचार करने का है कि इतने को द्रवलिंगी नहीं कहा, छठे गुण स्थान में भी आ जाते हैं तब भी, और मैंने व्रत तो लिए थे सातवें गुण स्थान के लायक मतलब अप्रमण, लेकिन कमी आ गई तो पाँचवें गुण स्थान में आ गए, यमुनि महाराज चौथे में आ गए, समय दृष्टि तो है लेकिन व्रतों में कमी आ गई तो चौथा गुण स्थान आ गया, तब भी द्रविलिंगी कहलाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्म में आए तभी कहलाएंगे, और फिर मुश्किल ये है कि अगर मान लो आ भी गए आहार कर रहे थे बहुत अधिक आशक्ति हो गई द्रव्यता हो गई गुण स्थान नीचे गिर गया, आहार करते करते जब शुरू किया था तो पहले गुण स्थान में आ गया, और करते करते पूरे आहार उनको जागृति आ गई फिर सातवें में आ गए, अब आप क्या करोगे, क्या आपके पास कोई नाप है कि अब मिथ्या दृष्टि हो गया मत करो, अब देव आहार सम्यक दृष्टि हो गया, अब देव आहार अब नहीं देव मिथ्या दृष्टि हो गई, तो कहते ये अपने पकड़ की चीज नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वही में जो द्वेष है वही प्रणाम है। द्रव लिंग भाव लिंग तो इसलिए कहा है, साधु के लिए कहा कि देखो जब बाहर से तुमने जो भेद धारण किया उसको भीतर से भी करो, जैसे तुम बाहर से विरक्त हुए हो सब चीजें से, वैसे भीतर से आसक्ति छोड़ो उसको समझाने, नहीं तो बाहर वेश वेश रह जाएगा, भीतर क्या है तुम्हारे। इसी तरह श्रावक को कहते कि श्रावक की जो है गति नियम लेवे तो भीतर से लेवे, अकेले बाहर से नहीं, नहीं तो वो भी द्रवलिंग कहे। द्रवलिंग का मतलब सिर्फ बाहर दिखता है, भीतर से नहीं है, भावों में नहीं है, और अगर भावों में भी है तो वो भावलिंग कहलाएगा। इस तरह से द्रवलिंग भावलिंग ये सातों अनुष्ठान। इसके बाद फिर चाहिए सातवें अनुष्ठान में दो डिवाइडेशन है, एक स्वस्थान मतलब अपने आप में स्थिर हो जाता है, ध्यान में लीन हो जाता है, और फिर उसके बाद सातिशय अप्रमाद मतलब इतनी अधिक विशुद्धि बढ़ाता है ध्यान के दौरान कि बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर ऐसे परिणाम करता है जो आज तक नहीं हुए, उनको कहते अपूर्व करण परिणाम, जो अभी तक नहीं हुए थे ऐसे परिणाम। करण मतलब परिणाम, अपूर्व मतलब अपूर्व जो पहले नहीं हुए थे, ऐसे परिणाम अगर करता है तो उसका वो ज्यादा आत्मा। फिर उसके बाद और अधिक विशुद्ध परिणाम बढ़ाता है, तब उस तब नौवें गुण स्थान में कहता कि जिस गुण स्थान में सभी जीवों के परिणाम एक से हो उसे कहते अनिवृत्तिकरण नाम का नौवा गुण स्थान। फिर उसके बाद और आगे बढ़ यहाँ पर जाकर के वो नौवें गुण स्थान में अपने जो वेद थे उनको वहीं रोक देता। अब उसको स्त्री पुरुष हूँ या नपुंसक हूँ इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होगी, वहाँ पहुँच कर इतने डीप हो ध्यान में लीन हो गया। उसके बाद उसने शारीरिक शायन नष्ट करके दसवें गुण स्थान में उसको कहते उपशांत कषाय या कि उपशांत मुंह या कि क्षीण मुंह कषाय उपशांत मुंह, वो अपने मुंह को शांत कर देता है या कि मुंह का क्षय कर देता है। मात्र जो है सूक्ष्म रूप से लोभ रह जाता, तो इसको दसवें स्थान को सूक्ष्म लोभ नाम का गुण स्थान कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर उसने कषायों को उपशम किया था, मुंह को दबाया था, चारित्र मुंह को विशेष रूप से, ये सब चारित्र मुंह को दबा करके चढ़ने वाले या क्षय करके चढ़ने वाले, दो तरह स्थिति होती है। जैसे सातवें अनुष्ठान बैठा था ध्यान में लीन हुआ, अपने जो मोहनी कर्म था जिसकी वजह से कषायें थी सीधा मोहनी न कहकर कषाय को उसने दबा दिया, दबाया तो ऊपर उठा, कषाय दबाई तो अगर दबा के ऊपर उठाया तो पहले आठवें में जाएगा, नौवें जाएगा, दसवें जाएगा और ग्यारहवें, इस तरह से चढ़ जाएगा। ग्यारह तक कषाय को दबा करके उतने ऊपर तक चढ़ गया, लेकिन ग्यारहवें में जाकर के कषाय अंतर मुहूर्त में उदय में जरूर आएगा क्योंकि दबाया था, इसलिए नीचे आएगा ग्यारहवें से दसवें में, नौवें में, आठवें में, सातवें में, फिर कोशिश करें तो फिर चढ़ सकता, और अगर हार गया तो सीधे पहले में आ सकता, इतने नीचे गिर सकता, इतनी ये उतार चढ़ाव है। अब हाँ बिल्कुल। फिर दूसरी प्रक्रिया करता है कि फिर ध्यान में लीन होता है, और ध्यान में लीन होकर के अब की बार अपनी कषायों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। अब रहने नहीं देंगे, दबाएंगे नहीं, इनको नष्ट ही कर देंगे, नष्ट करके आगे बढ़ता तो फिर आठवें में जाता है, उसी को फिर शपक बोलते हैं। अभी बोलेंगे आठवें वाले को उपशम और शपक, ऐसा सुनने में आता है उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, तो उपशम श्रेणी तो उसको उपशम श्रेणी कहते हैं उपशम, और उसको उपशांत बोलेंगे, और शपक मतलब छह करके चल रहा है, तो फिर आठवें में जाएगा, नौवें में जाएगा, दसवें में, लेकिन अब की बार अब ग्यारहवें नहीं जाएगा, अब सीधा बारहवें में जाएगा, अब गिरेगा नहीं, दसवें से सीधा बारहवें, ग्यारहवें में नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे शीर्ण कषाय, उसने अपनी सब कषायों को नष्ट कर दिया, और अंतर मुंह दौड़ कि वो केवल ज्ञान तेरहवें में पहुंच जाएगा, और केवल ज्ञान के बाद ध्यान में लीन होकर के और योग का से भी पार हो जाएगा, तो अयोग के भी चौदह स्थान से ये चौदह स्थान। सात तो समझ में आते हैं, बाकी सात बहुत थोड़े समय के हैं, उनकी अपनी बुद्धि में वो एकदम नहीं आते, क्योंकि परिणामों की बहुत विशुद्धि बढ़ रही, ध्यान में लीन हो गए, शुक्ल ध्यान में लीन हो गए, तो धीरे धीरे पर हर और देखिएगा आठवां नौवां सबका काल एक एक अंतर्मुख है, और सबका मिला के भी एक अंतर्मुख, इतनी सूक्ष्म है और बहुत थोड़े समय हुआ, और आज वर्तमान में सात ही मुनि महाराज जी भी बहुत ध्यान में लीन हो तब भी आठवें में नहीं जा सकते, क्योंकि जो आठवें में चला गया उसको तो मुक्ति निश्चित है, और आज मुक्ति तो है, उसके लिए चाहिए सहना, आठवां स्थान जो भी प्राप्त करना श्रेणी जिसको चढ़ना है उसको वज्र वृषभ नाराज सहना चाहिए, उत्तम सहना चाहिए, इस प्रकार के निकृष्ट सहना से फिर नहीं चढ़ना, शरीर की क्षमता महाव्रत ले लेंगे तो फिर चढ़ता था। उनकी परिभाषा है और लिख लेंगे फिर इनमें डिटेल। अब चौथे गुण स्थान में अपन ने कह तो दिया चौथा, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, जो उपशम समय दृष्टि वो अलग, क्षय उपशम समय दृष्टि अलग, क्षायक समय दृष्टि अलग, ऐसे चौथे गुण स्थान में भी कई वेरायटी कई प्रकार के हो गए। अब देश व्रत में भी जो है पहली प्रतिमा वाला भी पाँचवें गुण स्थान वाला है, ग्यारहवीं प्रतिमा वाला भी पाँचवें गुण स्थान वाला है, तो सबके उसमें फिर संयम स्थानों में परिवर्तन आएगा धीरे धीरे। विशुद्धि दो लोग भी एक जैसे व्रत लिए हों तब भी दोनों की विशुद्धि में फर्क है, दोनों दो लोग रात्रि भोजन का त्याग करे हैं लेकिन एक के भाव अलग है एक के अलग, दोनों में समानता नहीं हो सकती। ऐसे करके एक एक गुणस्थान के सैकड़ों भेद बढ़ते हैं, एक ही गुणस्थान लेकिन लेकिन शामिल कर दिया एक ही में कि देशव्रति है, ये भी देशव्रति, इनमें भी थोड़ा व्रत लिया, इनमें भी थोड़ा, सब एक एक नए पैसे से लेकर के 99 पैसे तक पैसे ही थे, एक रुपया नहीं कहला, तो वो सब जो है सब इसी तरह से उसमें पाँचवें गुणस्थान में डाल दिया। ये गुणस्थान बहुत हमेशा काम आती है ना, सुनने में आता है कि चौथा गुण स्थान पाँचवा गुण स्थान, तो दिमाग में फौरन आ जाए पाँचवा मतलब किसी ने सम्यक दर्शन के साथ थोड़े से व्रत लिए हैं, बस और ज़्यादा नहीं झगड़े नहीं करना। सात छठा सातवा उन्हीं महाराज जी का होता है, महाव्रति होते हैं सम्यक दर्शन। चौथा गुण स्थान कह रहे हैं मतलब जिसने व्रत नहीं लिए लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र श्रद्धा है चौथा। पहला है मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धा व्रद्धा उसके गुरु में, इस तरह से ये एक बार फिगर दिमाग में, फिर परिभाषाएं तो इनके पढ़ना है? एक व्यक्ति कहने लगे कि अभी महाराज गुण स्थान था तो कोनो गुण स्थान नहीं, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, पहला होगा एक ना एक तो होगा
पहला तो हुआ
नहीं, पहले गुण स्थान कम से कम अपने को देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, तो चौथा व्रत नहीं लिए हैं इसलिए अव्रत, और जिसने वो ले लिए व्रत ले लिए हैं तो उसका पांचवा पशु तक का हो जाता पाँचवा, पर देव नारकी को नहीं होगा, जैसा अपन समझेंगे डिटेल में किसको कौन सा व्यवस्था हो सकता, देव में चौथे से ज़्यादा हो सकता, नारकियों को चौथे से ज़्यादा हो सकता, पशुओं को पाँचवें से ज़्यादा हो सकता, मैं बहनों को पाँचवें से ज़्यादा नहीं हो सकता, पाँचवें बहन क्योंकि वो पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते। साथ में थोड़ा बहुत मिथ्यात्व रहता है तो उससे दोष लग जाता है, उससे मिथ्यात्व तो नहीं रहता पर सम्यक दर्शन में थोड़े दोष लग जाते हैं, तो वो अपन देखेंगे कि 25 दोष कौन कौन से, ये अपन पढ़ चुके हैं चौथे गुण स्थान में तो है लेकिन 25 दोष लगेंगे, ज़्यादा दोष लगेंगे तो फिर नीचे गिरोगे, देख हुई व्यक्ति दिन भर में 25 दफे नीचे आ जाओ फिर ऊपर चढ़ जाओ, ये तो डर थमता है, जरा सा श्रद्धा में कमी आ गई तो नीचे पहले गुण स्थान में, फिर जोर मारा फिर चौथे गुण स्थान में, ये उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता, कोई व्यक्ति का भी गुण स्थान ज़्यादा से ज़्यादा अंतर नहीं टिकेगा, उसके बाद में उसको प्रयास करके उसे मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा हमेशा। उसका नाम ही ये है कि मोह और योग के माध्यम से, हमारा मोह और योग मतलब मन वचन की क्रिया, इसके माध्यम से जो उतार चढ़ाव विचारों में आता है भावों में उसी के साथ। Thank you.